ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। प्रोक्तम किलतैद भगवत्तमेना निवृत्ति धर्माभिरतायतेना सनत्कुमाराय सचाह पृष्टः संख्यायनायंग धृतवृताय प्रोक्तं किलतेद् भगवत्तमेना निवृत्ति धर्माभिरतायतेना सनत्कुमाराय सचाह पृष्टः संख्याय नायांग धृतवृताय प्रोक्तं किलतेद् भगवत्तमेना निवृत्ति धर्माभिरतायतेना सनत्कुमाराय सचाह पृष्टः संख्यायनाङ्गाय धृतवृताय। प्रोक्तं किरतद् भगवत्तमेन निर्वत्ति धर्माभिरतायतेन सनत्कुमाराय सुचाह पृष्टः संख्यायनायांग धृतवृताय। उक्तं किलतद् भगवत्तमेन निर्वत्ति धर्माभिरतायतेन सनत्कुमाराय सचाह पृष्टः संख्यायनायांग धृतवृताय। निर्वत्ति धर्माभिरतायतेन सनत्कुमाराय सचाह पृष्टः संख्याय नायाय धृतवृताय।
शब्दार्थ प्रोक्तम कहा गया था, किल निश्चय ही, हेतत यह भगवत्तमेन भगवान शंकरशन द्वारा निर्वृत्ति वैराग्य धर्म अभिरताया इस धार्मिक व्रत को धारण करने वाले के लिए तेना उसके द्वारा सनत कुमार आया सनत कुमार को सह उसने च भी आह कहा पुष्ट पूछे जाने पर सांख्यायनाय सांख्ययन नामक महर्षि को अंग हे विदुर धृतवृताय व्रत धारण करने वाले को अनुवाद तात्पर्य द्वंद्वे सफेद चरण अरविंद भक्ति विधान स्वामी श्लोकोपात की द्वारा श्लोकोपात की। इस तरह भगवान शंकरचंद ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने शंकरचंद से सुना था। तात्पर्य इस प्रकार है, परंपरा प्रलाने की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान शंकरचंद से श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। इसी तरह सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान शंकरचंद से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसीलिए भक्ति योग में नौ बातों से दो बातें श्रवण तथा कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। श्लोकोपात की। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा वयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्यैव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का अध्याय 8 है। शीर्षक है गर्भोदकशय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। तो हम देखेंगे इस अध्याय में, आगे के अध्याय में भी भगवान के ऐश्वर्य के बारे में वर्णन हो रहा है, विभिन्न अवतारों के बारे में वर्णन हो रहा है। तो भगवान की स्थिति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवतम अगर अब ज्यादातर आप समाज में जाएंगे तो आजकल के समाज में श्रीमद् भागवतम का लोग मतलब समझते हैं 10वां स्कंद, कृष्ण की रास लीला, बाल लीलाएं आदि। लेकिन भागवत का मतलब प्रारंभ होता है भगवान के चरणों से, यानी श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद। तो वैसे ही अन्य स्कंदों के वर्णन वर्णन किया गया है विभिन्न अंगों से, और 10वां स्कंद क्या है, मुखारविंद है भगवान का। तो क्या होता है कि आप जब भागवतम को पढ़ते हैं, आपने महसूस किया होगा जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं या कर रहे हैं, दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद बड़ा कठिन लगता है। सृष्टि का वर्णन है ना, विश्व रूप भगवान का, विराट रूप और अलग अलग अवतारों का वर्णन, तो लगता है इंटरेस्टिंग नहीं है। जब थोड़ा बहुत शुरू होता है स्टोरी, धमाल, कुछ थ्रिल सस्पेंस होगा तब मजा आएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर इंटरटेनमेंट ढूंढते हैं भागवतम में। तो वो भी है, कुछ है इसलिए ऐसे बात नहीं है, लेकिन भगवान की स्थिति को जब तक नहीं समझेंगे तो भगवान को हम लोग सरेंडर नहीं कर पाएंगे। जैसे जब हम लोग मंदिरों में स्कॉन के पहले किसी मंदिर में जाते थे तो हमारे अलग अलग तरीके थे प्रणाम करने के। कोई ऐसा प्रणाम करता है ना, कोई ऐसे करता है ना, कोई ऐसे करते हैं कई लोग, अभी करते हैं कई लोग प्रणाम करने के कई लोग ऐसे करते हैं। मैं देखा ऐसे कर रहा था एक व्यक्ति, हनुमान जी को ऐसे प्रणाम करा, कई लोग के तरीके हैं। तो लेकिन जब हम लोग सुन लिए कि परम पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति कैसी है कृष्ण की, तो दंडवत करते हैं आप, इसीलिए दंडवत करते हैं कि भगवान की जब महिमा सुन लेते हैं, भगवान की स्थिति जान लेते हैं, तो सरेंडर करना आसान रहता है। जैसे हमने से कोई व्यक्ति बैठा हो सकता है कि बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हो गवर्नमेंट में और बहुत धनी हो, हमें नहीं पता, तो हम उनके साथ सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी शक्तियों के बारे में उनका विवरण मिलेगा, आप उसको स्पेशल रिस्पेक्ट देंगे, बोले गति लीजिए भाजी, हरे कृष्ण भाजी, प्रसाद लीजिए, है ना, रिस्पेक्ट देंगे ना। कारण क्या है कि अभी तक आपको उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन नहीं पता चला था। ठीक उसी प्रकार इन जो भागवत के इन स्कंदों में क्या होता है, वर्णन किया गया है कि भगवान की स्थिति क्या है, तब पता चलता है, तब हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं। तो यहां पर आज इस अध्याय में जो शीर्षक है गर्भोत्कर्षाय विष्णु का, विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, उसके पहले यहां पर मैत्री मुनि बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कहां से सुना हूं, मैं जैसे परंपरा से सुना हूं वैसे बताने जा रहा हूं, तो इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये श्लोक स्पेशली पूरा देखा जाए तो डेडिकेटेड है परंपरा प्रणाली के लिए, कि परंपरा कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। कई बार इस्कॉन में आने के बाद भी हम परंपरा प्रणाली को उतना ज्यादा वेटेज नहीं दे पाते हैं, जबकि उसके बिना कुछ नहीं है। तो जो प्रमाणिक परंपरा है उसके बारे में प्रभुपाद जी हम बता भी रहे हैं कि संदेश जो है वो परंपरा के अनुसार सुना जाए तो एसिटिक्स हमको मिलता है। और यहां पर बता रहे हैं कि शंकरषण भगवान से सनत कुमार ने सुना। तो श्रीमद भागवतम की जब बात आ रही है तो श्रीमद भागवतम को कैसे ढंग से पेश किया जा रहा है, देखिए हमारे सामने ऐसे ही नहीं बता दिया जा रहा है। पहले उसका गुणगान हुआ प्रथम अध्याय में भी, यहां पर भी हर अध्याय में कहीं ना कहीं भगवतम का पहले गुणगान होता है ताकि हमारी श्रद्धा बने रहे, है ना। जैसे आपको बहुत तेज भूख नहीं लगी मान लीजिए, लेकिन अगर आपको व्यंजनों के बारे में जब बताते हैं कि आज श्रीमद भागवतम के बाद चाट पकौड़ी मिलने वाली है, गोलगप्पे मिलने वाले हैं, है ना, सुनते साथ मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप कल्पना करने लगते हैं स्वाद का, तो स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में चर्चा होती है, रुचि बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद भागवतम का गुणगान होगा तो भागवतम सुनने में रुचि बढ़ जाएगी। अभी रुचि नहीं है, अभी सुनने में हमारी रुचि नहीं है, अभी हम लोग या तो कई कारणों से सुनना चाहते हैं, या तो सुनना चाहते हैं अथॉरिटी क्या सोचेगी, है ना, या कभी कभी लगता है चलो बड़े बड़े ज्ञान की बातें मिलेंगी सुनने के लिए, मैं भी किसी को बताऊंगा तो पता चलेगा मैं भी जानता हूं, कभी कभी इस भावना से सुनते हैं। पर श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम जो है एक स्थान बताया गया है, वेद हैं जितने भी वेद हैं, तो चार वेद बोला जाए और उपनिषद हैं, ये राजाओं की तरह आदेश देते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, ये करो तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे आदेश है। पुराण जो होते हैं वो मित्रों के समान देते हैं, आपका कोई फ्रेंड होगा जब आपको कोई अच्छी बात बताएगा तो एग्जाम्पल्स देंगे, पुराणों में अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, स्टोरीज हैं, है ना। और काव्य और भजन जो होते हैं, हमारे आचार्यों ने जो भजन लिखे हैं और काव्य हैं, ये प्रेमी की तरह देते हैं, ये बड़े सुंदर होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े अच्छे से डिजाइंड है सुनने में भी। आप वक्त देखना कोई भागवतम के श्लोकों को उतना नहीं दोहराता है जितना भजनों को दोहराता है, है ना। तो प्रेमी की तरह आदेश देते हैं और शिक्षा देते हैं। पर श्रीमद् भागवतम जो है, जो अमल पुराण है, वो शिक्षा तीनों प्रकार से देता है। श्रीमद् भागवतम के श्लोक आप गा भी सकते हो, बड़ा आनंद आता है ना। और वो राजाओं की तरह कई जगह आदेश भी देते हैं और एक पुराणों की तरह मित्रों की तरह भी हमें सहायता प्रदान करते हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, स्टोरीज एंड वुड्स की। तो भागवतम सामान्य ग्रंथ नहीं है, है ना। जैसे वेदव्यास जी ने जो पुराणों की रचना की तो 18 पुराण बनाए, 6 तमोगुण, 6 सतोगुण और 6 रजोगुण के बनाए। तो भागवत पुराणों को सतोगुण में गिनते हैं, लेकिन वो सिर्फ सत्वगुण नहीं है, वो शुद्ध सत्वगुण है, अमल पुराण, बिल्कुल उसमें कोई त्रुटि नहीं है, है ना, एकदम फ्लॉलेस है, 100% परफेक्ट है। तो इसको जब हम लोग सुनेंगे तो श्रीमद् भागवतों का जो जिसके बारे में जो भगवान के बारे में चर्चा की गई है, इसमें से एक सुगंध निकलती है। जब हम इसको सुनते हैं या बोलने में वक्ता बताता है, जो भी वक्ता होता है, तो इससे एक सुगंध निकलती है। वो भगवान के चरणों की तुलसी के समान सुगंध होती है, और उसको नाक से नहीं सूंघा जा सकता, उसको कान से सूंघा जा सकता है, और उसको हृदय में पहुंचती है, हृदय को निर्मल करती है ना। इसलिए ध्यान रूप सुनना जरूरी है। बताते हैं अगर जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत से अगर जैसे सुनते हैं या शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को हम पढ़ते हैं, तो बताते हैं कि हमारा हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि उसी क्षण अगर ध्यान रूप से सुनते ही स्टार्ट प्रारंभ करते हैं भागवतम सुनना, तो मुक्ति के द्वार खुल जाएगा आपका, वहां पर आपके लिए जगह बन गई, स्पेस बन गया है। तो ये फायदा है भागवतम सुनने का। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? श्रद्धा होना जरूरी है। अगर भागवतम क्लास में श्रद्धा से नहीं बैठे हैं तो सिर्फ इस कान में आए हैं तो इस कान से निकल के इस कान से चले जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा किस किस पर? श्रद्धा संस्था पर, श्रद्धा वक्ता पर भी होना चाहिए, कोई भी वक्ता हो। कई बार ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से सुना जाए, इस व्यक्ति से सुना जाए, अरे उनका लेक्चर है, चलो सुनते हैं। कोई भी स्पीकर हो, विषय क्या है? श्रीमद् भागवतम, तो सुनना चाहिए श्रद्धापूर्वक। क्योंकि अगर ऐसी धारणा लेकर बैठेंगे कि वक्ता अलग अलग हैं, डिस्क्रिमिनेट करेंगे वक्ता को, तो हम किसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? भागवतम के साथ। चर्चा का विषय तो वही है ना, वक्ता भागवतम के अलावा क्या बोलेगा? तो इस श्रद्धा से आके बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, हमारे श्रद्धा में कमी होगी यहां कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हरिनाम बदलेगा नहीं, भागवतम बदलेगा नहीं, इस्कॉन का कोई सिस्टम बदलेगा नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। अभी कुछ होके बदल जाए शायद, तो इसीलिए पूरी श्रद्धा होकर सुनना पड़ेगा। और वर्णन किया गया श्रीमद् भागवतम में तो भौतिक तर्क वितर्क को त्याग कर श्रवण करना पड़ेगा। मतलब बैठते समय भागवतम क्लास में आए तो सारा चीज एक्सेप्टेंस के मूड में रहना चाहिए। मुझे श्रवण करना, समझना, चैलेंजिंग मूड में नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जब हम लोग चैलेंजिंग मूड में बैठते हैं कि मैं भी इस श्लोक को जानता हूं और मैंने पढ़ रखा है, अभी अंतिम में प्रश्न पूछूंगा, हालत खराब कर दूंगा स्पीकर की, जब इस भावना से बैठेंगे तो क्या होगा, आप यही ढूंढेंगे कि वक्ता कब गड़बड़ करे, उसमें से अच्छा चीज नहीं ले आएंगे। जैसे किसी कंपनी में हम जॉब करते हैं तो सैलरी डिजाइन होती है, उसमें से कहीं पीएफ कहीं कहीं कटता है, टैक्स कट जाता है, जो एक अमाउंट आता है उसको क्या बोलते हैं? टेक होम। क्या बोलते हैं? टेक होम। क्योंकि घर ले जा रहे हैं तो उसको अपने लाइफ में यूज करेंगे। श्रीमद् भागवतम क्लास में जब आते हैं तो टेक होम क्या है हमें सोचना चाहिए। व्हाट इज फॉर मी, मैं इसको टेक होम कैसे ले जाऊं, घर में इंप्लीमेंट कैसे करूं। इस भावना से जब सुनने आएंगे तो फायदा होना नहीं होगा, और ऐसे जाएंगे कुछ और उद्देश्य जाएंगे तो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा, पर टेक होम कुछ नहीं होगा, घर कुछ नहीं ले जाएंगे। श्रवण का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। श्रवणम को सिर्फ श्रवणम शब्द से नहीं जोड़ा जाता है, श्रवणम के तीन स्टेजेस होते हैं, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। श्रवणम का मतलब जो भी सुन रहे हैं, मननम का मतलब जब यहां से हम बाहर जाएं तो उसी विषय पर चर्चा करें कि क्या चर्चा हुई थी। सांख्यानंद मुनि के बारे में चर्चा हुआ था, विदुर मुनि पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से, तो मैत्रेय मुनि वही चीज बता रहे हैं जो उन्होंने अपने गुरु से सुना था, है ना। और इस अध्याय में क्या वर्णन हो रहा है, इस अध्याय में क्या वर्णन हो रहा है, तो जब सुनेंगे और चर्चा करेंगे तब क्या होगा, स्मरण होगा। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र में सुदर्शन जी की, श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री गौर की। तो जैसे एक उदाहरण मैंने सुना था, एक वर्धमान आचार्य से सुना मैंने, कि जैसे हम जो हम पहले सब लोगों कुछ ना कुछ मूवीज देखी होगी, थिएटर में जाकर मूवी देखते हैं, मूवी सभी लोग देखते हैं वहां पर बैठे और सब शांति से देखते हैं, कोई हल्ला नहीं करता, किसी के मोबाइल बजता है बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है, चारों तरफ अंधेरा रहता है, पूरी तरफ फोकस होना है स्क्रीन की तरफ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, से आप कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं कि हाईली इंटरेस्टेड होकर देखते हैं, है ना, तो देखते समय सुनते भी हैं, दैट इज श्रवणम, बता रहे श्रवणम होता है। फिर वो थिएटर से मूवी के 3 घंटे देखने के बाद बाहर निकलते हैं और उसका मननम होता है बाहर, देखो क्या सीन, तो क्या फॉल्ट था यार, बड़ा जबरदस्त मजा आया, क्या मारा, वो तो सीन जबरदस्त था, वो एक्शन क्या था, हीरोइन हीरो गाना सब चर्चा करते हैं, घर जाते तक दोनों ने देखा फिर भी चर्चा करते नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है। और जब वो अकेले होते हैं, जब सोते हैं, तो स्मरणम होता है, नींद में सब चीज याद आती है, मैं भी हीरो हूं, हीरोइन के साथ घूम रहा हूं, मैं भी एक्शन दे रहा हूं, सब कर रहा हूं, सब ने मैं सब सोचा। श्रवणम और कीर्तनम अच्छे से होगा तो स्मरण अपने आप होगा, जिसका श्रवण कीर्तन अच्छा नहीं है स्मरण नहीं होगा, गारंटी है। तो इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी बोल रहे तात्पर्य में कि भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है, श्रवणम और कीर्तन। उसमें भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं श्रवण के बारे में, कोई ठीक से नहीं सुना है तो प्रचारक नहीं बन सकता, उन्नति नहीं कर सकता। जैसे आपको जानकारी होगी, आप आता पता कर लीजिए कि जिस व्यक्ति के पास सुनने की क्षमता नहीं होती, जो बहरा होता है वो गूंगा अपने आप हो जाता है, किसी ने शब्द सुना ही नहीं क्या बोलेगा वो, जब शब्द कभी सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या, जैसे माँ बोलती बोलो माँ, तो उसे सुनाई देता माँ, तो उतना मुंह खोलता रहता माँ, जब तक शब्द सुना ही नहीं तो क्या निकल रहा होगा मुंह से। इसलिए जितने लोग बहरे होते हैं जन्म से वो सब गूंगे हो जाते हैं, जबकि बोलने की क्षमता होती है उसमें, गूंगे क्यों हो जाती कभी बोलेंगे, बड़े होकर कभी बोल नहीं पाते हैं, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक बोल नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमारा भक्ति भी प्रारंभ होता है, अगर ठीक से नहीं सुनेंगे, आध्यात्मिक श्रवण नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक बोल नहीं पाएंगे, जो सुनेंगे वही बोलेंगे। जिसका भागवतम श्रवण अच्छा होगा वही तो कुछ बोल पाएगा, है ना। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का सेवा लगा कि तुम 3 महीने तक सिर्फ प्रवचन दोगे, तो बड़े उदास हो गए, अपने गुरु के पास जाकर पूछे कि गुरु महाराज मुझे ऐसे ही मौका मिल रहा है, सिर्फ बोलना पड़ता है, मैं तरस गया हूं, बैठकर सुनना चाहता हूं। बोलते जिसने खूब श्रवण किया है उसी को बोलने का मौका मिलता है, फिर श्रवण नहीं किया उसको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बोल ही नहीं पाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा तो उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, श्रवण बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये बात बताई भी जा रही है कि किस प्रकार श्रवण करना चाहिए, तो प्रतिनिधि से सुनना चाहिए, जैसे इसको व्यास आसन कहते हैं, ठीक है। तो व्यास आसन में बैठने वाला व्यक्ति कोई भी हो वो व्यास जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो सामान देते हैं, गिलास पानी देते हैं, माला पहनाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो किसी को बोलता है शांत हो जाओ तो सब शांत हो जाते हैं, बोलेंगे भागवतम के बाद देख लेंगे उसको, अभी तो सुनने दो इसके बाद। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो व्यास जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा जो अथॉरिटी सिस्टम बनी हुई है उसी ने उसको ऑथराइज किया है, कोई अपने आप नहीं बैठ जाता। रूपा जी कहते हैं किसी ने मुझे गुरु, मैं अपने आप गुरु ही बन गया, उनके गुरु ने आदेश दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया कि मेरी आज्ञा से जाओ और तुम पूरे विश्व में प्रचार करो, गुरु बनो, प्रीचिंग करो, तभी मैं गुरु बना, से नहीं गुरु बन गए और प्रॉपर शिक्षा दीक्षा प्रणाली से बने। तो ये जो भागवत श्रवण विधि है ये प्रतिनिधि से सुनना होता है और ये एक प्रोसेस है, श्रवण में एक प्रोसेस है, ध्यान रखिए। श्रवण को हम लोग एक एक्टिविटी समझते हैं, आए बैठे सुना और चले गए, एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है कि स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है ना, स्टार्ट होता है, प्रोसेस चलता है, विधि होती है। तो उस विधि को हम लोग ठीक से प्रोसेस को नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसी प्रोसेस से फैन एक प्रोसेस है, चलाना घूमता तब हवा आती है, अगर उस प्रोसेस को नहीं रन करेंगे तो आपको हवा नहीं प्राप्त होगी। वैसे श्रीमद् भागवतम का एक प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है, सबसे पहला चीज क्या है, सेवा की भावना से बैठना चाहिए। श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है, इसकी सेवा कैसी की जाएगी, सुनकर की जाती है या अध्ययन करके की जाती है। अगर अध्ययन करके सुन के नहीं सेवा कर रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला, ये सेवा का मूड होना चाहिए, ठीक है। और उत्सुकता होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुनने का। जैसे आप लोग के सबके अंदर है, उस समय जब आरती होती इतने लोग नहीं थे, लेकिन सुनने के लिए काफी लोग आए। वैसे सभी चीजों में उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन भागवतम सुनने के लिए उत्सुकता नहीं है तो कभी उसका लाभ नहीं होने वाला। और दूसरा है, शुद्ध मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन कैसे होगा? चार नियमों का कठोरता से पालन करेंगे। जब कठोरता से पालन करेंगे तो भागवतम सुनने में आनंद आएगा। ठीक है, तो यहां पर रूपा जी बता रहे हैं, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये परंपरा प्रणाली की यही विधि है, है ना। सबसे पहले ज्ञान शंकर जी से लिया किसने? शरदचार्य कुमारों ने। कुमार संप्रदाय का वर्णन किया जा रहा है। जैसे हमारी परंपरा में आता है, ब्रह्मा जी ने सुना भगवान से ज्ञान, फिर उन्होंने किसको दिया? किसको दिया? नारद मुनि को। नारद मुनि ने किसको दिया? व्यास जी को। व्यास जी किसको दिया? हाँ, मध्वाचार्य को। तो अब लोग की परंपरा में देखते हैं, वैसे ही यहां पर भी परंपरा है, सिस्टम पूरा। यहां पर बताया गया तीन चार श्लोकों में आपको प्राप्त होगा कि भगवान शंकर चंद्र ने किसको दिया? चार कुमारों को। चार कुमारों ने किसको दिया? आपके श्लोक बता रहे हैं, संख्यानंद मुनि को। संख्यानंद मुनि ने किसको दिया? पराशर मुनि को। पराशर मुनि ने किसको दिया? मैत्री मुनि को। तो मैत्री मुनि ये बात बता रहे हैं कि ये सब ऐसे सुना गया है परंपरा के द्वारा। आगे के श्लोकों में पराशर मुनि का नाम भी आएगा। कृपा जी अपने तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार उनको मौका मिला, एक ब्राह्मण के रूप में थे इसलिए उनको मौका मिला भगवान के बारे में भागवतम बताने का। तो देखिए, इन लोग यहां पर कृपा जी एक चीज और बता रहे हैं कि सनत कुमार जो है पहले से सिद्ध है, समझ रहे हैं, पहले से क्या है? सिद्ध है। लेकिन फिर भी शंकरशन भगवान जब बता रहे हैं, फिर ही बोल रहे हैं कि क्या बता रहे हैं सर, मुझे पहले से बताए, वोट इज डिस्कुच नया बताओ ना, कुछ मसाला जोड़ के बताओ, ऐसे बोला उन्होंने। पहले से सब कुछ पता है, यहां तक कि जो हमारे शुभदेव गोस्वामी जब वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित महाराज भी महामार्गवाद है, उनको भी सब ज्ञान है भक्ति का, लेकिन फिर भी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है भागवत सुनने के लिए विनम्रता होना जरूरी है। पहले से ही ग्लास भरा हुआ रहेगा तो ग्लास में कुछ डाल नहीं सकते, ये सोच के आना है कि आज मैं जो भी सुनूंगा शायद मेरे लिए सारा नया ही होगा, और जो भी सुनना मुझे ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है ना। ऐसे कई चीजें हैं, देखना भागवतम में कई बार रिपीट की जाती है। कई भक्त लोग बोलते हैं कि अरे वही सब था, नया क्या था इसमें, क्या हम लोग कुछ मसाला ढूंढने आए, क्या खाने की चीज है, क्या ये कपड़ा खरीदने आए कि नया चीज मिलना चाहिए। ये बार बार सुनेंगे तभी फर्क पड़ेगा। जैसे कि प्रभुपाद जी के शुरू के जितने भी लेक्चर्स हैं भागवतम के, भगवद गीता के, वो आप सुनिए, उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि मनुष्य जीवन पशु का जीवन कंपैरिजन यही सब बताया गया है। लोग बोलते हैं कि सिर्फ बेसिक लेक्चर्स हैं, क्या हम बेसिक लेक्चर से ऊपर उठ चुके हैं? हाँ, क्या रियलाइजेशन हमारा हाई हो गया है? ये नॉलेज जो है, जैसे यहां बोल रहे हैं उचित अधिकारी से सुनना जरूरी है। एक रियलाइज डिप्यूटी से सुनेंगे तो रियलाइजेशन हमारा हाई होगा, है ना। जैसे कि उदाहरण देते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था एक दूर गांव में पूरे गांव में आग लग चुकी है, और वहां से एक व्यक्ति आता गांव से देखकर, गांव में जो आग लगी उसकी जो स्थिति को देखकर आता है, तो एक अपने मित्र से बताता है कि मैंने आग देखा, भयंकर आग, पूरा गांव जलकर राख हो गया है, उसमें एक व्यक्ति जल गया और उसकी पत्नी, विधवा पत्नी वहां बैठकर रो रही है और बच्चा बगल में रो रहा है, मुझे बड़ा दुख हुआ। जब ये बात बताता है तो हम लोग उसको जल्दी समझ में आता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है। आप सुन लिए, अब आप किसी को बताओगे तो उतना रियलाइजेशन कहा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसने देखा नहीं है। तो रियलाइज व्यक्ति से सुनने सुनता है, ज्ञानी न तत्व दर्शिना तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना का मतलब है तत्व का दर्शन किया और रियलाइज कर लिए, देख लिए। उनसे जब हम सुनते हैं तब फर्क पड़ता, जैसे प्रभुपाद जी है तत्वदर्शिना है, शुद्ध भक्त है, इसलिए उनके परपोर्ट नहीं होते तो हमको भागवतम के श्लोक समझ नहीं आएंगे, कभी पूरी जिंदगी में पढ़ते रहे कभी समझ नहीं आएंगे। आप कोशिश कीजिए सिर्फ श्लोक पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, अनुवाद भी प्रभुपाद जी का ही है, अनुवाद भी मान लीजिए पढ़ भी लेते हैं, भक्ति विधान तात्पर्य नहीं पढ़ते हैं, गारंटी है वो कुछ नहीं समझ, गारंटी है, इतना कठिन हमारे लिए समझना। तो मेरा प्रश्न आप लोग से यही कि रियलाइजेशन बोलते ना, कभी बोलते मैंने रियलाइज कर लिया, व्हाट इज रियलाइजेशन, क्या है रियलाइजेशन मैं बता सकता है? बोलते हैं मैंने रियलाइज कर लिया, व्हाट इज रियलाइजेशन, हिंदी मत बोलना, आप बोलते हैं अनुभव। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियलाइजेशन? देख लिया बस, तो उसको रियलाइज कर लेता है, वही मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज महसूस, आप उसको पर्यायवाची शब्द बोल रहे हैं। एक उदाहरण से समझाने, आपकी बात को उदाहरण से बताना चाहूंगा जो आप बोल रहे हैं, फिर आप तो बताएंगे कि मान लीजिए कि आप किसी को एक्सीडेंट में मृत्यु देख लिए, ठीक है, और उसको शमशान घाट पर लेके जला दिए, तो रियलाइज हो गया नॉलेज, देखकर आपके सामने अनुभव हुआ, आपने किसी का एक्सीडेंट होते देखा, उसको मरते देखा, उसको ले जाकर जला दिए, रियलाइज हो गया कि शरीर जल गया, शरीर तो कुछ भी नहीं, नश्वर है, रियलाइजेशन हो गया। क्या उसके बाद हम लोग शरीर के स्तर पर काम करना बंद कर देंगे, आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे, रियलाइज कर लिया है? व्हाट इज रियलाइजेशन? हम लोग बहुत अक्सर बोल लेते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग किया अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना। उदाहरण के लिए आग में अपने हाथ डाला, जल गया, अब कभी जिंदगी में आग में हाथ नहीं डाले, दिस इज रियलाइजेशन। क्या इतने बार सुनने के बाद कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, कितने लोगों ने हमें से रियलाइज कर लिया, कौन महाभागवत बैठा है रियलाइज कर लिया, हाथ खड़ा कर, इसका मतलब अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ, हमें रियलाइजेशन नहीं हुआ ना, तो व्हाट इज, यही बता रहे हैं जो रियलाइज कर चुके हैं, जब उनसे सुनते हैं हम लोग तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जैसे महाभागवतों के परपोट को पढ़ना जरूरी है, इसलिए एडवांस डिवोटी से सुनना जरूरी है। और लेकिन बोलते हैं बेसिक बातें, हाई फाई बताइए, बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ, बेसिक रियलाइज नहीं किया हमने, ये तो बेसिक ही है ना कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ तो क्यों हाई फाई टॉपिक्स पढ़ना चाह रहे हैं? पहले से रियलाइज था, इसी जन्म में रियलाइज नहीं करेंगे आगे, वो रियलाइज टोल थे। एक होते साधन सिद्ध, होते हैं नित्य सिद्ध, रूपा जी नित्य सिद्ध है, पहले से उनको पता है रियलाइजेशन है ना, और हम लोग जो होंगे वो ठोकर खा करके सीखते हैं। तो इसीलिए महाभागवत से सुन के रियलाइज करेंगे आप, जो रियलाइज सोल से सुनते हैं तो आपका रियलाइजेशन बढ़ेगा, ही बता रहा हूं। इसलिए किसी से भी नहीं सुनना है, श्रीमद् भागवत में यहां रूपा जी बता रहे हैं कि आप कितने भी बुद्धिमान हैं, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुनता है तब तक उपदेशक भी नहीं बन सकता, प्रीचर बन ही नहीं सकता। आप संसार के कोई कितने बड़े प्रीचर आपको मानते हो, लेकिन अगर आप अथॉरिटी से नहीं सुनते हैं, उचित अधिकारी से नहीं सुन रहे हैं, तो आप प्रीचर नहीं माने जाएंगे, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये बता रहे मतलब है ना। एनीवे, तो यहां पर यही पॉइंट यहां पर हाईलाइट किया गया है, और आगे साथ साथ में सुनने के लिए श्रवण करने के लिए श्रीमद् भागवतम हमें क्या चाहिए, सेवा करने की भावना और विनम्रता की भावना होना चाहिए, सर्विस मूड होना चाहिए हमारा, तब कुछ हो पाएगा। जैसे रामानाचार्य के जो शिष्य थे दास रथी, इसके बारे में वर्णन आता है कि वो जब पूछने गए कि भगवद गीता का जो श्लोक है 18.66, तो उसका जीस्ट क्या है, उसका मर्म क्या है, मुझे समझाइए सर्वधर्मान परित्यजिगा, तो रामानाचार्य क्या कहा, एक दूसरे भक्त के पास भेजा, जाओ उनसे पूछो वो बता देंगे आपको। उनके पास गए और जैसे ही आप बोलते हैं तुम्हें अच्छा सही समय पर आगे थोड़ा झाड़ू पोछा लगा दो, पोछा लगाते हैं, बोलते हैं गोबर ले आओ, आश्रम को लिपाई कर दो, ये कर दो, पूरा कराते रहे, रात हो गया, बोले सो जाओ कल बताऊंगा, सुबह उठते बोलते पानी भर लो, लकड़ी ले आओ, 6 महीने तक सिर्फ काम कराते रहे, करते 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 6 महीने बाद उसको रियलाइज हुआ मैं इस व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं, मैंने अपने गुरु की तो सेवा कभी नहीं की। तो छह महीने बाद जब उनको देखे हाव भाव, तो पूछते हाँ आपका कोई प्रश्न था, आप पूछने आए थे। बोलते नहीं, मुझे उत्तर मिल गया, मैं जा रहा हूं। वो जाते हैं, सबसे पहले रामानुचार्य जाते हैं, बोलते हैं गुरुदेव मुझे बताइए आपकी सेवा कैसे करूं। पहला सेवा तो किए नहीं, प्रश्न पूछ रहे थे, सेवा कैसे करूं। तो उसी समय एक स्त्री आई थी जिसके घर में रामानुचार्य के पास आई थी। रामानुचार्य गुरु की पुत्री थी। उनके गुरु ने कहा था जब भी तुम्हें कुछ कष्ट हो तो रामानुचार्य के पास जाना। तो रामानुचार्य के पास जाती है कि मेरे घर में मैं कुकिंग फिक्स नहीं करती हूँ, ससुराल में बहुत समस्या है, तो मुझे कुक चाहिए, उनको सेवक चाहिए। और व्यक्ति दुवटी आते हैं, दासरथी आके क्या बोलते हैं कि मुझे एक कुछ सेवा दे दो, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोलते तुम इनके घर जाओ और कुकिंग करो। पहले सेवा की परीक्षा भी होगी और विनम्रता की परीक्षा होगी। उनके घर जाकर वो कुकिंग करते हैं, दो साल तीन साल तक कुकिंग करते हैं। उस गांव में एक मायावादी प्रचारक आता है प्रचार करने के लिए, प्रवचन देते रहते हैं। तो ये भी बैठ पीछे बैठ कर रसोईया के पेशभूषा में पीछे बैठ कर सुनते रहते हैं। तो इनसे रहा नहीं जाता है ना, वैष्णव से मायावाद तो सुनते ही क्रोध आने लगता है, लॉजिक निकलने लगते हैं, उससे रहा नहीं जाता है। तो वो बोलता महाराज मुझे कुछ पूछना है, प्रश्न पूछता है, वो आंसर नहीं दे पाते हैं, वही आंसर देते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। बोलते तुम रसोईया बैठ जाओ, तुम नहीं बोलोगे, आप उसको बैठा देते। फिर जब तबाह भंग होती है, जाते तुम कौन हो, तुम्हारी बातों को देख के लगता है तुम रसोईया नहीं हो सकते, तुम बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति लगते हो। बोलते यहाँ पे बताते हैं अपना परिचय कि मैं रामानुचार्य का शिष्य हूँ, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोले ऐसा सेवा करो। तो उनकी बातों को सुनकर, उनके व्यवहार को सुनकर वो मायावादी भी भक्त बन जाता है। और वो रामानुचार्य से मिलने जाता है कि इसका जो शिष्य इतना महान है, वो व्यक्ति कितना महान होगा। उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं आपको किसने बताया मेरे बारे में। बोले आपका एक शिष्य है जो वहां पर अभी रसोईया बना हुआ है। बोलते हाँ, तो भूल गया उसको, मैं उनका भेजा था, भूल गया। फिर दासरथ जी को खत पत्र देकर बुलाते हैं, बोलते हैं अब तुम पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न था, क्योंकि अब सेवा भी हो गई, विनम्रता भी हो गई है, प्रणिपात भी हो गया है, तब प्रश्न पूछा जाएगा। बोलते प्रश्न पूछो। बोलते गुरुदेव मुझे सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। जब हम लोग सर्विस करते हैं, विनम्रतापूर्वक सेवा करते हैं गुरु की, भक्तों की, कृष्ण की, ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान, तब रियलाइजेशन होगा जो नॉलेज को आपने पढ़ा है। उन भक्तों से सुनेंगे, उन भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे, तो भगवान ज्ञान दीपेन भाष्वता, भगवान बोलते हैं ज्ञान का दीपक जलाता हूं हृदय में, है ना। जैसे टेंथ चैप्टर का टेंथ वर्स है ना, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददान मुदीकम कामयान मामुख्यान। उसमें बोल रहे हैं, उसके पर्पोर्ट में सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की एक डिवोटी जिसके पास दीक्षित हो, प्रमाणिक गुरु हो, प्रमाणिक संस्था हो, पर उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो भगवान को रियलाइज कर सके, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। लेकिन वो दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो मैं उसको स्वयं बुद्धि देता हूं, ददाम ये बुद्धि को, ऐसाम सतत युक्ता नाम कैसे प्रीतिपूर्वक हम। तो भगवान भी उसको मदद करते हैं, क्योंकि गुरु की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगातार लगा हुआ है, तो उसका जो नॉलेज वो ले रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है, रियलाइज नहीं हो रहा है, हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान खोपड़ी में प्रकाशित नहीं होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। करोड़ों साल तक पढ़ते रहिए ग्रंथों को, काम नहीं आने वाला। महाभागवतों की सेवा में लगोगे तभी समझ आना शुरू हो जाएगा, रियलाइज होने लगे। तो यहां पर ये चीज बताया जा रहा है। और श्रीमद् भागवत में ही आता है, स्कंद 3:20 अध्याय में आता है, वर्णन आता है, जिसे बोलते हैं अव्यक्त मार्ग वित्त। अव्यक्त मार्ग, अव्यक्त भगवान को अव्यक्त कहा गया, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके मार्ग के बारे में जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनसे सुनना चाहिए। बोल रहे हैं कि भले आपको समझ आए या ना आए, देखिए नई बात बोल रहे हैं कि आप उसे सुनिए, आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आपको लाभ होगा, यहां बताया जा रहा है। जैसे श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो सारा शेट उनका फॉरन बॉडी थे, वृंदावन में कथा हो रही थी हनुमान मंदिर के पास, प्रभुपाद जी कथा कर रहे हैं सारा हिंदी में, और उनको समझ नहीं आ रहा, बगल में बैठे हैं उन लोग, बस खोल के बैठे, कुछ समझ ना आए, उठ के जाने लगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं सिट डाउन, बैठाए। बोले बैठो क्यों जा रहे हो। बोले प्रभुपाद जी हिंदी में समझ नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी बोले ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, जो सुनना चाहिए इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोग रियलाइज हो रहे, जैसे प्रभुपाद जी लोग या डिवोटी से जब सुनते हैं तो हमको समझ में नहीं भी आया ना, तब भी लाभ करता है। घर में अकेले कहीं लेक्चर MP3 सुनने से अच्छा है मंदिर में आकर भक्तों के बीच में सुने, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक बार एक महाराज सन्यासी पूना गए लेक्चर देने के लिए, वहां लेक्चर था उनका, लेक्चर देने आया तो एक दिन पहले बहुत बड़ा फेस्टिवल था पुणे में, तो दो चार ब्रह्मचर्य आए। तो महाराज बोले कहाँ है सब ब्रह्मचर्य? बोले महाराज बहुत थके हुए हैं, कमरे में लेटे हुए हैं, वो उन पर सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनको। बोलते मैं प्रवचन नहीं दूंगा आज। महाराज उठे चले गए, कल मैं प्रवचन दूंगा, कल सबको बुलाइए, सब होंगे तो प्रवचन दूंगा। मतलब सुने बड़े साई को भी सभी लोग आए कि गड़बड़ हो गया, महाराज नाराज हो गए, सारे लोग पहुंचे तो महाराज नहीं आए। महाराज अपने असिस्टेंट के साथ MP3 रिकॉर्डिंग भेज दिया, बोले इसको लगाओ और सुनो, सब लोग आज ये आदत है ना इसको सुनो। तो कभी भी जब आप MP3 से सुनते हैं ना, फर्क नहीं पड़ने वाला। सामने में बैठ के सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम का चर्चा करते हैं, प्रश्न उत्तर होता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। इस भावना से सुनना चाहिए, ठीक है। और मध्वाचार्य श्रीमद् भागवतम में कोट करते हैं, प्रभुपाद जी मध्वाचार्य कहते हैं, विद्या कर्माणि च सदा गुरु प्राप्त फल प्रदा, अन्यथा नैव फलदा प्रसन्नोक्त फल प्रदा। विद्या कर्माणि, जो विद्या का जो कर्म है या विद्या का ज्ञान जो है वो गुरु से ही प्राप्त होता है, प्रॉपर नॉलेज से, प्रॉपर वे में अगर लेंगे तो। बिना गुरु के आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला, कोई भी ज्ञान, जितने भी संसार में ज्ञान है उसे गुरु की आवश्यकता पड़ी है। तो श्रीमद् भागवतम के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज्ञान उसके लिए तो कंपल्सरी है। तो इसीलिए अगर हम प्रॉपर वे में सुनेंगे तो हमें फायदा होने लगेगा। तो मैंने ढूंढा, काफी मेहनत की, हमारे पास कुछ फोटोकॉपी लाए आपके लिए। परंपरा जो हमारी है वो परंपरा, चार परंपरा कौन सी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को अन्य परंपराओं के बारे में इतना पता नहीं चलता है। तो परंपरा के बाद एक किस्त आप इसको बांट सकते हैं। तो इसमें चारों संप्रदाय के बारे में और मायावाद के बारे में भी बताया गया है, आचार्य कौन कौन से हैं, कमेंट्री क्या है, वाद कौन सा है, और ये जो चार परंपरा है ये प्रमाणिक। कोई आपको पूछता होगा कभी कभी, ऐसे लोग मिलते होंगे, हम कैसे मान लें कि चारों परंपराएं प्रमाणिक हैं, ऐसा कभी मिलेंगे आपको? पद्म पुराण से जो श्लोक किया गया है वो भी वर्णन किया गया यहां पर, ना संप्रदाय विनय मंत्रस्य निष्फला मता अतः कलो भविष्यन्ति चतुर्वाह संप्रदायिना। तो चार संप्रदाय होंगे कलयुग में, और वो कलयुग में चार संप्रदाय के आचार्यों के नाम भी इसी में लिखे हुए हैं। सबसे नीचे रामानुजम श्री श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुहा श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बादित्य चतुष्कना। तो स्पेशली उनका नाम भी लिखा है, इसका श्री दामोदराचार्य का, मध्वाचार्य का, विष्णु स्वामी का, निम्बादित्य का नाम लिखा है इसने। कोई बोल सकता है ना कि ये तो कलयुग में है, पद्म पुराण कलयुग तो नहीं है, इतना तो मानते हैं ना, पद्म पुराण कलयुग तो नहीं है, पहले का है। तो पहले लिखा गया था इसका मतलब लोग आने वाले थे, सब आचार्य अभी आए हैं, इन आचार्यों का नाम लिखे इसका मतलब ये चार प्रमाणिक हैं। अगर और कुछ लिखना था तो इस शास्त्र में और भी आचार्यों के नाम, प्रमाणिक लोगों के नाम लिखने थे, इसका मतलब ये चार के अलावा कोई प्रमाणिक नहीं है। और देखिए संप्रदाय को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ब्रह्म संप्रदाय को मध्व संप्रदाय बोलते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय को बोलते हैं, और रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय बोलते हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय को बोलते हैं, रुद्र संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी वल्लभ संप्रदाय के कहते हैं, पुष्टि मार्ग भी कहते हैं कभी कभी, कुमार संप्रदाय में निम्बार संप्रदाय, निम्बादित्य संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, और मायावादी स्कूल कभी स्मार्ट संप्रदाय भी कहते हैं। आचार्य कौन हुए? मध्वाचार्य चेतन महाप्रभु, रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, निम्बार्क स्वामी निम्बादित्य शंकराचार्य, और इनके कमेंट्रीज भी हैं जो वेदांत सूत्र पर लिखे हुए हैं। तो जब तक कोई परंपरा वेदांत सूत्र पर अपनी कमेंट्री नहीं प्रस्तुत करती है तो प्रमाणिकता नहीं होती है। उन्होंने प्रस्तुत किया है तृण प्रज्ञ भाष्य, श्री भाष्य, सर्वज्ञ भाष्य, पारिजात सौरभ भाष्य, शारीरिक भाष्य, उन्होंने लिखा। तो कोई बोल सकता है शारीरिक भाष्य और लिखने से प्रमाणित हो गया, लेकिन वो क्या मायावाद स्कूल के लिए, वैष्णव संप्रदाय का नहीं है भाई, वैष्णव संप्रदाय का प्रमाणित नहीं है, वो सकता है मायावाद में प्रमाणित होना वो, लेकिन वैष्णव संप्रदाय में तत्व क्या है, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद और अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब एक है ना मोनी जी। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो अपने अपने प्रीचिंग में, या कहीं भी कोई चैलेंज करता है आपको, बोलता है कि ये कहाँ लिखा है, पद्म पुराण के श्लोक दिखाइए और परंपरा के बारे में पूरे डिटेल दिया हुआ है, तो किसी को बता सकते हैं। और परंपरा के अलावा भी इसी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कुछ डाइवर्जन दिया है, कुछ डेविएशन भी हुए, कुछ लोग टेढ़े मुड़ गए है ना। 13 अपने संप्रदाय हैं, 14 भी प्रथम नया निकला हमारा, नया नया जानते हैं 14 अपने संप्रदाय कौन सा है, ऋतु की जरूरत। तो 13 संप्रदाय निकले, तो इसका 13 संप्रदाय का एक ग्रंथ में भक्तिवर ठाकुर लिखते हैं कि अप संप्रदाय के बारे में, अप संप्रदायवाद ग्रंथ लिखते हैं, तो बहुत ही विस्तृत वर्णन है कि अप संप्रदाय का। तो अप संप्रदाय बोल रहे हैं इसी संप्रदाय से डेविएटेड है, देखने में कैसे लगेंगे, वही तिलकधारी, माथे तिलक, गले कंठी माला, गोपी पेड़ा, यही तो अली रचेला, देखने में ऐसे लगते हैं कि भक्त हैं, भक्त प्राय है ना। और जैसे कि एक अच्छा वर्णन मिलता है, एक जगह बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति नाटक प्रस्तुत करता है, तो नाटक में कोई व्यक्ति नरसिंह बना है तो क्या बोलेंगे, अरे वो प्रभु जी एकदम नरसिंह भगवान जैसे जैसे दिख रहे थे, हम भाई बोलते हैं नरसिंह है, नरसिंह भगवान जैसे दिख रहे थे, वैसे हम लोग वेशभूषा भी पहन लेते हैं, कैसे वैष्णव जैसे बोलते हैं, आप पूरे वैष्णव जैसे दिख रहे हैं एकदम, वेशभूषा तो आपको वैष्णव जैसे है, क्यों, क्योंकि वैष्णव जैसा आचरण हमने प्रस्तुत नहीं किया, वैष्णव बने नहीं है, वैष्णव प्राय है, वैष्णव जैसे हम दिखते हैं। तो मैं आप संप्रदायों का नाम बताता हूं तो आपको सुन के अजीब लगेगा, आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ग्रंथ, आप संप्रदायों का वर्णन है चाहते लिख सकते हैं। जात गोसाई, कास्ट गोस्वामी, गोस्वामी परिवार में जन्म लिए, या गोस्वामी थे हमारे पुराने पूर्वज जुड़े हुए थे, हम भी गोस्वामी हैं, सरनेम गोस्वामी रख लिए, तो गोस्वामी गोस्वामी संप्रदाय, कोई विधि विधान नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई सिस्टम नहीं, जात गोसाई जन्म से ही वो जाति है उनकी, गोसाई जात है। स्वार्थ जो ब्राह्मण होते हैं, कास्ट ब्राह्मण, स्वार्थ ब्राह्मण होते हैं, आप देखते हैं घरों में गुरु होते हैं, कुल गुरु, सबके अपने अपने गुरु गुरु होते हैं, घर में पूजा पाठ कराते हैं, वो भी वैष्णव संप्रदाय होते हैं, सब शरण कथा करते हैं, वो भी वैसे वो भी वैष्णव है, लेकिन वो भी डेविएटेड है। उसके बाद से प्राकृत सहजिया, सहजिया चीफ शुडो डिवोटीज, वो इतना चीपली लेते हैं भक्ति को, पहले दिन ही वो दिखाने लगेंगे, पहले दिन ही आपको पता लें कि हम कुछ हैं, भक्ति हैं कुछ हैं, और भगवान से रसा भाव प्रस्तुत करते हैं, है ना। गौरांग नागरी, गौरांग नागरी जो है, गौरांग महाप्रभु को भगवान तो बोलते हैं, और क्या करते हैं, उनको बीच में रखकर कृष्ण मान कर वो कोई गौरांग बन जाएगा और चारों तरफ हम लोग रासलीला जैसा करेंगे, रसाभास जैसा कुछ। सखी बेखी, सखी सखियां जैसे वेशभूषा पहनती हैं स्त्रियां, वैसे ही वेशभूषा पहन लेते हैं, और आम उनके जो हैं सारे नाम होते हैं। एक बार मुझे याद है हम लोग होटल गए थे, होटल वाले बाबा जी के पास कथा हुई थी, विद्यालय प्रमुख समय बैठे थे और कीर्तन होने वाला था, पीछे ही मंदिर के पीछे दो संप्रदाय के लोग बैठे थे, सखी बैठी और पूरा वेशभूषा वो पहने हुए थे, गोपी ड्रेस और पीढ़ी पीढ़ी से बैठे सोने का, उन्होंने दिखाया देखिए गुरु जी क्या कर रहे हैं, उनकी चीज की बैठे, आप देखेंगे बरसाना में जाएंगे तो आपको दिखेंगे लोग ऐसे, कुछ लोग सर पर दही ले लो, दही लो बोलेंगे, पुरुष रहेंगे वेश धारण किएंगे स्त्री का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं पूरे जीवन भर स्त्री जैसा कार्य किए हैं, जन्म वो स्त्री बनेंगे, गोपी नहीं बनेंगे, गोपी भाव तो कुछ और था, गोपी भाव क्या था, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का संतुष्ट करना, और ये क्या कर रहे हैं, कितना चीटली ले लिए हैं, पूरी सखी में तो घूम रहे हैं, सखी नहीं बनेंगे अगले जन्म में स्त्री बनेंगे। फिर है चूड़ाधारी, रासलीला इमिटेटर्स, रासलीला का इमिटेशन करते हैं, है ना, एक कृष्ण बन जाएगा बाकी सब सखी बनेंगे, डांस करेंगे रास, ऐसे है।
अति बड़ी अपने आप को ज्यादा ग्रेट समझते हैं, टू ग्रेट, ज्यादा ग्रेट समझते हैं। औल बाउल सैनी दारावेश, ये चार संप्रदाय और हैं। औल बाउल सुनने में जी लगता है, औल बाउल सैनी या साईं बोलते हैं, दरवेश ये सब सूफी तांत्रिक थे लोग वैष्णव बनने बाद में, लेकिन अभी भी वो लोग कल्ट कर रहे हैं। जैसे बनारस में आप देखते हैं, बनारस में चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बनाया था, प्रकाशन सरस्वती को, उनकी कई हजार से 15,000 भक्त बन गए। तो अब मायावाद फिलोसफी नहीं छोड़ रहे हैं, कीर्तन भी करते मिलेंगे, आप जाएंगे बनारस को कीर्तन करते मिलेंगे, फिर फिलोसफी वही मेंटेन कर रहे हो, तो बोले डाइवर्टेड माना जाएगा ना, वापस संप्रदाय माना जाएगा, उनको रियल पास्ट में नहीं होगा। ऐसी है जो सूफी तांत्रिक लोग थे, उन लोग चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से या उनके संपर्क में आके कुछ भक्त बन गए, पर पूरी तरह भक्त बने, फिलोसफी उनकी वही थी। वे कर्ता भाज, वर्शिप ऑफ गुरु एज गॉड, वो गुरु को ही भगवान बोलते हैं, गुरु को फाइनल बोलेंगे ही भगवान, गुरु भगवान नहीं, गुरु भगवान के समान है, साक्षात हरित वेनस, हरि के समान है, हरित वेनस हरि। फिर है निड़ा निड़ी, वैष्णव के बुद्धिस्ट थे चंद्र महाप्रभु ने, बुद्धिस्ट निड़ा निड़ी, तो बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिस्ट चैतन्य महाप्रभु संपर्क महा के भक्त बने, तो पूरी तरह वो भी कन्वर्ट नहीं हो पाए, जो लोग कुछ लोग तो पूरे भक्त बन गए, जो लोग नहीं बन पाए ये उनके फॉलोवर में डाइवर्जन जो आया। तो ये इस प्रकार से 13 संप्रदाय है, 14 संप्रदाय जो है वो क्या है, ऋतुकिज्म। तो ये बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद कोई भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का बिंदु उठा रहे हैं, प्रभुपाद जी ऐसे शुद्ध भक्त जो किसी शुद्ध भक्त को पैदा नहीं दिए, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन है। और उनका लोग अभी आप लोग आईडीसी जो किए हैं, आपने कितने लोग आईडीसी दिए हैं, वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के पास हम लोग उनको प्रमाणित मानकर उनसे फॉर्म भर के देते हैं कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु बन जाइए, और उनके ब्याह पर कोई यज्ञ कराता हूं, उनको दीक्षा दे देते हैं, तो वो इस प्रकार से प्रभुपाद जी शिष्य बन जाते हैं। तो प्रभुपाद के पास फॉर्म क्यों ले जाते हो, कृष्ण के पास ले जाओ, नया संप्रदाय शुरू हो जाएगा आपका, आप कृष्ण के पहले शिष्य बन जाओगे, नया संप्रदाय फॉर्म देना। और दूसरा प्रमाण है कि आप प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी को फॉर्म दिया, आपको प्रभुपाद जी में आपका शिष्य हो, तो कैसे गारंटी कि प्रभुपाद जी ने आपको एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया, गुरु कभी कभी रिजेक्ट करते हैं कि वेट करो, कैसे पता चलेगा प्रभुपाद जी ने एक्सेप्ट किया है ना। ऐसे कई शांतियां उनके बीच में, जिसकी वजह से उनको भी आप संप्रदाय कहते हैं। तो ये संप्रदाय भी जाना जरूरी है, परंपरा प्राणी भी जाना जरूरी है, और संप्रदाय भी जानना जरूरी है। अब संप्रदाय को जानेंगे तो हम लोग बहुत सावधान रहेंगे, अपनी भक्ति को बचा लेंगे। तो यहां पर यही विधि बताई है, किस प्रकार परंपरा हमारे लिए बहुत जरूरी है, परंपरा से उचित अधिकारी से जो सुनता है वो उचित उपदेशक बन सकता है, और उसमें श्रवण जो बता रहे हैं, नौ विधियां हैं भक्ति की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्रवणम है। श्रवणम कोई नहीं किया है आगे के भक्ति का मुख्य नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने हरे कृष्ण मंत्र के बारे में किसी से सुना नहीं, तो हरे कृष्ण मंत्र जब हो गया, फिर कभी दीक्षा के बारे में सुना नहीं तो दीक्षा लोग कैसे, कृष्ण कौन है कभी सुना नहीं तो कृष्ण की भक्ति कैसे करोगे। तो हर चीज हम पहले सुनते हैं तब आगे कार्य करते हैं। हरे कृष्ण जी का कोई प्रश्न है, देखिए इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, एक तो मैं आपकी बात मानकर उत्तर दूंगा, एक नहीं मानकर उत्तर दूंगा, क्योंकि हो सकता है हमारा मन क्या बोलता है कि हम ये करते इसलिए भागवत संबंध नहीं आते, ऐसा पॉसिबिलिटीज भी हो सकता है कि हम आए डॉक्टर आपको बोल देगा कि 8 से 9 अगर भागवत संबंध नहीं सुनोगे तो मर जाएंगे, लेकिन व्यवस्था सारी कर लोगे, संसार में किसी कोने में वो डॉक्टर के बीच में आकर श्रवण करोगे डॉक्टर ने बोला है, तो हमारी शायद प्रायोरिटी इतनी नहीं है, ये नहीं मानकर आपकी बात कर दे रहा हूं। और ये मान लेते हैं कि सिर्फ कुछ आपको प्रॉब्लम दिया है, तब भी घर में सभी सदस्यों के साथ बैठने पड़ी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, भागवतम के सरसरी नजर से देख लेते हैं। देखिए भागवतम स्टडी करने एक अलग चीज है, भागवतम को बैठकर भक्ति के साथ पढ़ना अलग चीज है, बहुत फर्क पड़ता है। प्रभुपाद जी ने कहा जब एक ही श्लोक को सभी लोग मिलकर पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंट एंगल में, तो उसका जो बेनिफिट मिलने वाला वो किसी से बेटर को नहीं मिल पाता। तो घर में बैठे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है मैं स्टडी करना चाहता हूं तो एक प्रसंग उठाइए, स्टार्ट कीजिए, प्रसंग खत्म होते तक पढ़िए, रोज रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कस पढ़ा सकते हैं और उसको इम्पोर्टेंट लाइन चीजों को हाईलाइट कर लीजिए और वापस आइए, हाईलाइटेड चीज को पढ़िए, फिर उसका नोट बनाइए।
श्रीमद्भागवतम की जगद्गुरु श्रीलभ्रोपा की नाय बहुत वंदे।